चर्चा का विषय है।
दुनिया की नब्ज पश्चिम एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू।
थैंक्स आनंद।
सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मुज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन 80 दिन 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये तीन सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे। और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है, क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है, ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको एसपीआरस बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है, तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को उनको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36,000 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कन्फर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है, और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है, तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहां पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
ये हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है, अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में अभी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है। लेकिन यह है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज यह है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हरेक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय ये रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो हम देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर, प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
जी हाँ बिल्कुल, और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहां जाना है और 2070 तक कहां जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूं कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफकोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लड़ से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती हैं, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सके। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा। तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपये की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रखकर चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, तो मुझे लगता है युद्ध तो है लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
थैंक यू,
धन्यवाद।
आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
चर्चा का विषय है